जनत्रिकालकेवन् विघ्नहरणमङ्गलकरण रामदासानन्द मस्तकपर गुरुदेवजी हृदय विराजे रामदास दोनोपखा सब विध पूरण काम चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गो निरञ्जनं निष्प्रतिभं निरीयं निराश्रयं निष्कलम प्रपञ्चं नित्यं ध्रुवं निरविशीर्स्वरूपं सनातनं राममहं भजामि तारकं तन्मन्त्रं रामदासगुर्वेष्टितं सदाकालं जपेज्जाप्यं त्रिविदितापविनाशनम् कलिकल्मषनाशायैव प्राणिमोक्षहेतवे दयालु महाराजेन मन्त्रोऽयं वणितपुरा ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोकसाधका तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्धं परमं भजे विभुं पद्मनेत्रं दधानं तुरीयं प्रकाशस्वरूपं नुतं विश्वदेवै श्रुतिज्ञानगम्यं शुभं विश्वनाथं स्तुवे वेदवेद्यं गुरुं रामदासं गुफावासी ज्ञानी गुरुपदनिवासी रविमहा हृदयेन संहारी त्रिदिव प्रतिहारी स्फुटगुण समच्चेतोहारी सकलमुपहारी नवमुदां दयालु श्री स्वामी नयन पथगामी भवतु मे तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकदा प्रसंग कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पया बोले राम जी महाराज की जय राम राम ओम गुरुदेव देवं परम धाम परमेश्वरं समाकं भक्ति रूपेणं कल्याणं जीवश्चयम् हरिरामाय रामाय नमो मंत्र सजीवनम् क्षरातीतं चिदानन्दं परं प्रज्ञातिकारणम् आदमङ्गलगुरुभ्यो नमः आगमनिगम इत्यास सुरतकयो संव्रतमहि हरिगुरु गुरु हरिपाश वचन विलासत जुगलविध ब्रह्मशेष भागोत अर्थपदारत एकशत गुरुतारण दृढपोत मोहनीर भव सिद्धुवे मनो उर्गता माय विषय लहर वेला अथग पतवारी गुरुशा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा परम आराध्य इष्ट और गुरुदेव के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि सत्पुरुषों के चरणों में भूत भविष्य वर्तमान में हुए संपूर्ण महापुरुषों के चरणों में कोटि से सादर वंदन प्रणाम। प्रभु के चरणों में अगाध स्नेह भाव से आत्मसमर्पण करने वाले सभी आबाल वृद्ध रामानुरागी प्रेमी जनों का यथा योग हार्दिक सम्मान। भक्तिमती माताएं बहनों के सबका बड़े स्नेह के साथ में आबाल का स्नेह के साथ में सम्मान करने के बाद गुरुदेव को और सत्पुरुषों के चरणों में वंदन के बाद अपने हृदय में प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए अपने समय के सदुपयोग की दृष्टि से सत्पुरुषों की वाणी के माध्यम से कुछ भाव जो सत्पुरुषों की कृपा से सुनने में एवं समझ में आए हैं जितने ही याद आएंगे उसी हिसाब से उतने ही बताने की चेष्टा की जाएगी। सत्पुरुषों के भाव असीम है, अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं, उनका पार पाना मनुष्य के लिए असंभव है। जो परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं उन महापुरुषों के वचनों का वैसे महापुरुष ही पार पा सकते हैं, वे ही उन्हें समझ सकते हैं, वे ही उसका यथार्थ बोध कर सकते हैं, करा सकते हैं। फिर भी हम तो कई तालाब पर गए, प्यासे आदमी के समान पानी पिया, किसने पूछा पानी पी लिया, कहां पी लिया, तो तालाब खाली हो गया क्या, पीछे पानी पी लिया, इसका मतलब पूरा पानी पी लिया तालाब का, पीछे कुछ नहीं है, ये बात नहीं। भले हमने पानी पिया है हमारी प्यास मिटाने के लिए, जितना पी सकते थे इतना पिया, लेकिन पीछे पानी बहुत भरा है, जो जाएंगे जो पिएंगे उनको भी वो अवश्य ही तृप्ति की प्राप्ति प्रदान करेगा सरोवर, जो उसके पास में जाके लाभ लेना चाहेंगे। इसी प्रकार सत्पुरुषों की वाणी भी अगाध है, अपरिमेय है, अगम्य है, उनका पार पाना, उसको यथार्थ रूप में समझना संसार के प्राणी के लिए बिल्कुल एकदम असंभव सी ही चीज है। फिर भी जैसा वो बोध प्रदान करेंगे, कृपा करेंगे, गिने चुने दिनों के घंटों में उनको यथासंभव उन महापुरुषों की बातों को बताने की चेष्टा की जाएगी। आप लोग प्रभु के चरणों के प्यारे हैं, वाणी का प्रसंग सुनने के उत्सुक हैं, इसलिए आज वाणी के इस प्रकथा प्रसंग के प्रारंभ के समय में यहाँ पर आप आए हैं। आज से अब ये वाणी जी का प्रसंग 9 दिन के लिए प्रारंभ हो रहा है, तो उसके प्रारंभ में यहाँ प्रसंग वाणी जी के लिए गुरु प्रकरण का आधार लिया जा रहा है। वैसे वाणी संत महापुरुषों के प्राणों का आधार होता है। आप लोगों ने प्रसंग में कहीं सुना ही होगा, जब खेड़ापा में विराजमान रामदास जी महाराज को देश निकाला हुआ, जोधपुर के राजा ने उनको देश निष्कासन दिया, लोगों के बहकावे में आकर के लोगों ने कह दिया कि पाखंड का प्रचार कर रहा है, धर्म की निंदा कर रहा है, अधर्म का प्रचार कर रहा है, ऐसा साधु महाराजा कहला करके आपका अपमान कर रहा है, ऐसे पाखंडी को तो अपने राज्य में नहीं रखना चाहिए। तो उस समय उनको राजा ने संदेश दिला दिया, आदमी भेज करके कि तुम निकल जाओ, कौन वर्ण पूज्य के पद्धति, यो कैसो उपदेश, ये तुमने क्या राम नाम का क्या प्रचार कर रखा है, कहते हो कि राम नाम से सब कुछ होता है, कुछ दूर देवता नहीं, तीर्थ नहीं, व्रत नहीं, उपवास नहीं, ये सब किसका खंडन करते हो, मेरे राज्य में इस प्रकार धर्म का खंडन करने वाला व्यक्ति रहे ये मैं सहन नहीं करता, निकल जाओ तुम, छोड़ो मारो देश। महाराज ने जो ही ये समाचार सुना वे वहां से तत्काल ही जैसे बैठे थे वैसे उठ करके चल दिए। बैठे जो ही उठी चले हरिधन जीवन प्राण। अब कोई जा रहे हैं बाहर, कितने दिन से आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या वहां पर सामान चाहिएगा, ये सारा कोई भी इंतजाम नहीं किया। स्थान में जा रहते थे वहां ऊंट थे, घोड़े थे, बैल थे, रथ थे, गाड़ियां थी, कपड़े गहने बिछाने के ओढ़ने के थे, खाने पीने का सामान था, अनाज के बोरे भी भरे थे, सब प्रकार की सामग्री बलस्थान में परिपूर्ण थी। रुपया पैसा भी था, सोना चांदी भी था, परंतु महाराज वहां से जब उठ करके चले किसी की तरफ अपने दृष्टि नहीं की कि भाई मुझे ये तो थोड़ा थोड़ा सामान साथ में ले जावे, परंतु हाँ इतना भी नहीं, बिना कुछ लिए भी नहीं गए, लिया जरूर था उसमें साथ में, पुस्तक लिया जना की वाणी आद अंत उद्धरण सेनानी, जो हमारे जीवन का कल्याण करने की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है, गुरुवाणी है, वो गुरुवाणी की पुस्तक वो उन्होंने जरूर अपने साथ में ली कि इसको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, धन दौलत छोड़ देंगे, अनाज रुपया पैसा कपड़ा लत्ता ऊंट घोड़ा छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ी जाएगी कि गुरुवाणी है, ये पीछे नहीं छोड़ेंगे। आद अंत उद्धरण सेनानी, इस जीवन में भी इससे लाभ, लोक और परलोक दोनों में लाभ, यहां और वहां सदा लाभ देने वाली गुरुवाणी है, इसलिए ऐसा उस पर आधार मान करके उन्होंने एक तो गुरु महाराज के स्थान से मिली हुई कंबल, एक हाथ में छड़ी जो गुरु प्रसादी की है, और तीसरे में गुरुवाणी जो वो भी गुरु महाराज की कृपा से सिंथल से मिली हुई थी, वो चीज उन्होंने साथ में ले ली और वहां से भगवान का राम महाराज का नाम लेकर के चल पड़े। कहां जाएंगे कोई पता नहीं, किसी का आमंत्रण नहीं कि उसके यहां पर जाकर के भोजन कर लेंगे, जागरण करेंगे, सत्संग करेंगे, कुछ नहीं, चल दो राम भरोसे रमरिया निर्भय रामादास, राम जी के भरोसे पर वे वहां से चुपचाप निकल पड़े। अरे धन दौलत की परवाह बिल्कुल नहीं है, तो सुनते संतों ने बताया जब वहां से निकले जो सुंदरमा जी रामदास महाराज की धर्म पत्नी वो उनके साथ में चली है, उनके गले में स्वाभाविक ही स्वर्ण हार था, गले में हार पड़ा था, उन्होंने कोई चला के लिया नहीं, सब चल दिए, बुलाया कि चलो तो वो भी चल दिए। अब वो चलते चलते महाराज की दृष्टि पड़ी सोने में, गले में सोने का हार, कहा नहीं पर चलते चलते केवल दृष्टिपात किया, गले में सोने का हार है, ये गहना लेकर के साथ में चल रही है, क्या बात है। जो ये विचार आया अंतर्भाव को समझने वाली, सैन लखे सो साध का है ना, कहे लखे सो मानवी, सैन लखे सो साध, कही हुई बात कोई मान लेता है वो तो होता है मनुष्य, और उनके संकेत को भाव को समझ लेता है वो होता है साधु, और मन की बात को पहचान लेता वो होता देवता, और कहने को भी समझे नहीं, मन की बात को समझे नहीं, इशारे को समझे नहीं, उसको क्या कहेंगे बताए। पशु तो कह नहीं सकते क्योंकि पशु तो इशारा समझ जाते हैं, इशारा देख करके वो भाव मात पहचान जाते हैं, लेकिन वो तो किसी में नहीं गिनती मारने वाला भाई हो, वो राक्षस से भी प्रतिन हो जाता है, राक्षस भी इशारा समझ जाते हैं कहीं। इस प्रकार संसार में हम ऐसे किसी अवगुण से न गिर जाएं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कहे लखे सुन कोई दूसरा कहता है तो जरूर उसकी बात का चिंतन मन करना चाहिए, भाव देखा, देखते ही समझ गई कि मेरे गहने पर दृष्टि गई है, मैं लोभ के वशीभूत होकर के क्या ये साथ में गहना लेके चल रही है, भगवान का भरोसा नहीं है क्या, ऐसा विचार आते ही चटपट गहने का गले से गहना निकाला, पास में पैर बोर का जो झाड़ था या कैर का झाड़ था वो निकाल करके उसमें वही जंगल में ही डाल दिया, पहाड़ी पर उस पेड़ को पहना दिया, और वो जहां का आता ही अब वहां से आगे चल पड़े। सज्जनों, सत्पुरुषों ने गुरुवाणी के प्रति इससे भी बड़ी भारी अगाध निष्ठा रखी है, सत्पुरुषों ने बताया है आगे, आजकल तो बहुत ढील कर देते हैं, बहुत ढील कर देते हैं, परंतु पहले ढील नहीं होती थी, गुरुवाणी के पाठ के बिना वाणी का पाठ किए बिना अन्न और जल कभी ग्रहण नहीं किया करते थे, संतों का नियम था। संतों के नियम के साथ में भक्त लोगों ने भी अपने जीवन को जोड़ दिया और बहुत से भक्त लोगों ने भी इस प्रकार नियम से गुरुवाणी पाठ का उन्होंने अपना प्रण लिया था। उन्होंने जो पुस्तक का पाठ नहीं कर सकते उन्होंने पाठ को कंठस्थ किया। इसके वाणी के कुछ गिने चुने अंश जो अत्यंत प्रभावशाली हृदय स्पर्शी उनको लगे, वैसे ग्रंथों को वाणी के वचनों को उन्होंने कंठाग्र कर लिया। तब कंठस्थ करके भी हम पाठ कर सकते हैं। कभी ऐसा समय होता है जिस समय हम पुस्तक को नहीं छू सकते, उस समय कंठस्थ पाठ करके भी हम अपना वो नियम पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार संतों ने वाणी को कंठ का हार बनाया, अपने गले का हार बनाया और हृदय का सच्चा हार बनाया। इसको ये हार के साथ में आहार भी बनाया कि खुराक बना ली उन्होंने अपने जीवन में। भोजन के बिना जैसे हम नहीं रह सकते, इसी प्रकार अपने जीवन में सत्पुरुषों की वाणी के पाठ के बिना हम नहीं रह सकते। इस प्रकार उन्होंने पाठ का नियम लिया और पाठ का जिन्होंने नियम लिया उनको पाठ का लाभ मिला है, मिलता है, क्योंकि संतों ने जो भी वाणी बनाई वो दुनिया में अपना नाम प्रचार करने के लिए नहीं बनाई। मेरा प्रचार हो, मेरी महिमा का गान हो, इस उद्देश्य से नहीं, परंतु भगवान के गुणगान प्रेमियों के कानों में पड़ेंगे, उनके हृदय में प्रभु के चरणों में प्रेम की जागृति होगी। केवल इसी भाव से ही जो उनके हृदय में भाव पैदा हुए उन्होंने शब्द के माध्यम से वाणी के माध्यम से हमारे सामने रख दिए। आज उनकी वाणी शब्द के रूप में हमारे सामने मौजूद है। हम उसका प्रत्यक्ष रूप में सत्पुरुषों का रूप मान करके यदि लाभ लेना चाहें उन शब्दों के माध्यम से हमें आज भी वो प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है, लेना चाहिए। सज्जनों, महिमा अपार है सत्पुरुषों की वाणी के विषय में, ज्यादा क्या कहा जाए। अब ये जो प्रसंग यहां चयन किया इसमें श्री दयालदास महाराज की वाणी का एक भाग है। रामदास जी महाराज की वाणी करीबन 4300 श्लोक संख्या की है और दयालदास जी महाराज की वाणी 36000 श्लोक संख्या परिमित है। बहुत विशाल वाणी की रचना की दयालदास जी महाराज ने। इनके विषय में ऐसा वर्णन आता है, पहले जन्म में ये दयालदास जी महाराज गुजरात में जूनागढ़ में एक बड़े विद्वान पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, बड़े बड़े विद्वान पंडित। अब वो कवि भी थे और पंडित थे और कथावाचक भी थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ भी थे, सब कुछ को उनको बातें याद थी, अच्छा अनुभव था उनके जीवन में। वे वहां जगह जगह भक्ति का प्रचार करते, सत्संग करते, कराते लोगों को, इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति की इच्छा थी उस इच्छा में वो पूर्ति में श्रेय दिया करते थे। कई वर्ष बीत गए, लोगों में अच्छा उनका मान हो गया, नाम हो गया, पंडित जी महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। नाम उस समय उनका था राम कृष्ण, पंडित राम कृष्ण। तो इस प्रकार वे वहां रहा करते थे। एक बार की बात है, उसी गांव में, उस नगर में एक पुरुषोत्तमाचार्य नामक दंडी स्वामी घूमते घामते चले आए। जैसे चतुर्मास का समय यहां हुआ है उसी प्रकार वहां पर भी उस समय चतुर्मास का समय आया। चतुर्मास का समय आया तो चौमासे के समय में महात्मा जी को आया देख करके प्रेमी लोगों ने निवेदन किया, भगवान आप चतुर्मास के लिए कृपा करके यहां पर विराजी। वहां एक मंदिर जिसकी व्यवस्था में कुछ कमी लग रही थी, वहां कुछ सेवा पूजा की इत्यादि व्यवस्था में कमी थी। मंदिर बड़ा विशाल था, केवल लोग बाग ही उसको देख रेख में संरक्षण में रखा करते थे। सत्संग के लिए प्रांगण भी वहां पर अच्छा था। लोगों ने प्रार्थना की कि आप इस मंदिर में विराजिए, अच्छा सत्संग होगा और मंदिर की भी व्यवस्था इस प्रकार अच्छी होगी आपके सहयोग से। महाराज वहां पर रह गए, अच्छा सत्संग चला। अब हृदय स्पर्शी सत्संग होता है तो स्वाभाविक ही लोगों का रेला, लोगों की भीड़ चली आती है, बहुत लोग ज्यादा संख्या में वहां पर आने लगे। और आने के बाद जो ज्ञान चर्चा का प्रसंग सुनाते, सुनने के बाद वापस जाते, सज्जनों ये बात याद रखने के काम में लेने की है, जो कोई सत्संग की बात सुनी जाए सत्संग में, उस बात को वहीं छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, साथ में लेके जाना चाहिए। और साथ में ले जाने के लिए उपाय क्या है कि जब भी वहां से रवाना हुए तो रवाना होते हुए एक अकेले तो रोना आते नहीं, कोई न कोई तो साथ में होगा, तो उससे उन्हीं सत्संग की चर्चा की बातों को आपस में करते करते जाओ। क्या कहा? ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये सत्संग की गप्पे मारते नहीं कि बोल, चुपचाप तो रहा नहीं जाता, बोले बिना रहा नहीं जाता, तो बातें तो करनी पड़ती है। तो वे ही सत्संग की बातें दोहराते हुए चलिए जाइए। तो एक हो गया क्या, एक तो हमारे को वापस दोहराने से वो बातें याद हो जाएगी, कंटस्ट हो जाएगी, और दूसरे में वो बात घर तक पहुंच जाएगी। जो हमारे आने के बाद पीछे घर में रह गए थे लोग बाग, जो सत्संग में नहीं पहुंच सके थे, उनको भी हम घर में जाकर के वो बात सुना सकेंगे और सुनानी चाहिए, ताकि उन लोगों को भी घर बैठे लाभ हो जाए। तो हमारे को तो समय का सदुपयोग का लाभ मिलेगा, वो सत्संग की बात याद रह जाएगी ये लाभ मिलेगा, और घर में बैठे लोगों को सत्संग का लाभ मिल जाएगा, वहां नहीं जा सके उन लोगों को भी। इस प्रकार जहां कहीं भी वे लोग जाते, सत्संग की चर्चा करते, लोगों में बड़ी भावना जागृत होती, दिन प्रतिदिन ज्यादा संख्या में लोग बाग सत्संग में आने जाने लगे, ज्यादा लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा, बहुत से लोग आए। अब ऐसे होते होते संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उधर जो पंडित जी थे ना, वो रामकृष्ण जी, लोगों ने चर्चा करते करते उनके कानों में भी ये सत्संग की बात पहुंचा दी कि आजकल पुरुषोत्तम आचार्य महाराज जी एक बहुत अच्छे आए हुए हैं, बहुत अच्छी सत्संग करते हैं, बहुत अच्छी सत्संग करते हैं। अब ये पंडित को ये बात सुनते थे, एकाई की बात जस्ती नहीं है, एक ही जगह पर दो दुकानदार एक ही प्रकार की दुकान लगावे तो कैसे लगती बताओ, ये मेरी ऊपर छाती पर क्यों आ गया, वो उसको पसंद नहीं करता है। तो वो भी सत्संग करने वाले और ये भी सत्संग करते, लोग बाग मेरी महिमा की जगह उसकी महिमा ज्यादा करते हैं, हृदय में कुछ ईर्ष्या और जलन पैदा हो गई। सत्संगी है, अच्छा है, लेकिन अंदर कुछ न कुछ उसमें कमी है, वो कमी इस प्रकार जागृत हुई, उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष पैदा हुआ। अब जहां कहीं भी जावे लोग बाग उनकी ज्यादा चर्चा करे तो आखिर में मैं भी जाके देखूं तो सही है क्या, एक दिन मन में जिंदगी जाऊंगा मैं भी देखने के लिए, सत्संग सुनने के लिए नहीं लेकिन उसकी परीक्षा करने के लिए, ऐसा बाबा क्या है, क्या चमत्कार है बाबा में। और वास्तव में वो वहां गया, गया सभा बैठी थी, अब वो भी मान के जो भूखे थे, इसलिए मान के भूखे होने के नाते जो मान वाला होता है सबसे आगे जाना चाहता है, लेकिन आगे कोई जगह थी नहीं कहां बैठे, सबसे पीछे कोने में जाकर के एक जगह ऊंची सी जगह थी वहां जाके बैठ गए, चलो यहीं से सुन लेंगे। अब उन्होंने वहां बैठ करके वो सत्संग की बातें सुनी, लेकिन बात सुनने की भी कला आनी चाहिए, सुनाने की कला लोगों में बहुत है लेकिन सत्संग सुनने की कला लोगों में बहुत कम है। सुनाने की कला बहुत है, अच्छे से अच्छे भजन सुनाएंगे हम लोग, अच्छे से अच्छे पद सुनाएंगे, अच्छे से अच्छी बातें कहानियां दृष्टांत ये सब सुनाएंगे, लेकिन सुनने की मन में हो तो अगर अच्छी तरह सुनना आ जाए तो निहाल हो जाए। और वास्तव में सुनाने की अपेक्षा पहले सुनना आना चाहिए, कि सुनना आना वो है जो भी बात सुने मैं नहीं जानता हूं ऐसा अनभिज्ञ बन करके उस बात को सुने, बस मैं कुछ जानता ही नहीं हूं ऐसा बन करके वो सत्संग की बात सुने, तो वो हृदय में उसका एकदम असर होता है। तो पंडित जी वहां बैठे रामकृष्ण जी, उन्होंने बातें सुनी, यद्यपि उन्होंने बातें तर्क के विचार से सुनी, देखते हैं पंडित क्या साहब ये बाबा जी बोलते हैं, लेकिन बाबा जी के वचन परम निर्भीक यथार्थ जो सीधा हृदय पर असर करने वाले ऐसे शब्द, जैसे रामदास महाराज ने वो भजन के विषय में सुनाया था, राम सुमरे प्राणिया भूले मद भाई, उस भजन के विषय में जैसे जिसने सुना उसके हृदय पर उसका असर हो गया और उनका शिष्य बन गया, वो उनका अनुयायी बन गया। तो महाराज के वचन जो ही उसने सुने तो सुनने पर वास्तव में बातें ठीक लगी। अब वो अपनी बातों से तुलना करने लगा, मैं जो बातें बताता हूं तो वो तो वास्तव केवल मैं पढ़ी पढ़ाई बातें सुनाता हूं, जो पढ़ता हूं वही बातें सुनाता हूं, लेकिन इनकी बातें जो दिख रही है सुनने में आ रही है ये पढ़ी बातें नहीं लग रही है, कुछ अनुभव की बातें लग रही है। कबीर जी महाराज जैसे कहते ना तो तुम तो कहते हो लेखी लेखी बात कहते रहो, और हम बात है अनुभव की बात बताते, जो बात अनुभव की बात है सुनी, और वो बातों का धीरे धीरे अपने हृदय पर असर होने लगा। एक दिन थोड़ी देर के लिए बैठा, दूसरे दिन और ज्यादा बैठा, ऐसे दो चार पांच दिन जाते 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 वो तो ऐसा आदि बन गया कि वहां बाबा जी के पास में जाकर के बैठ गया, उनके चरणों में पड़ गया, महाराज शरण में लीजिए मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य से हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जो परीक्षा देता था केवल और उनमें कोई गुण नहीं देखता था, उनके सच्चे शब्द थे इसलिए हृदय पर उनका असर हो गया और भाव जागृत हो गया और उनका शिष्य बन गया। अब वो वहीं पर या तो पंडिताई में जगह जगह अपना प्रचार करता घूमता था, लेकिन अब केवल महाराज जी के शरण में बैठा रहे, घर का काम धंधा करे, दौड़े फिर वहां पर चला जाए बैठ जाए, अधिक से अधिक वहीं पर रहे, कुछ ज्यादा जरूरी हो तो फिर कहीं इधर उधर बाहर जावे आवे करे, व्यवहार के हिसाब से कुछ काम करे, लेकिन ज्यादा समय महाराज के पास में बीतने लगा। उनकी बातें बहुत प्रिय लगी और उनको उसने अपना गुरु भाव से स्वीकार कर लिया कि ये मेरे गुरु हैं। सज्जनों, चौमासा बीत गया, बाबा जी चौमासा बीतने के बाद रवाना होने लगे, भक्त लोगों ने मना कर दिया, नहीं महाराज अभी हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको तो यहीं रहना पड़ेगा, यहां रहना पड़ेगा, ये हमारे ठाकुर जी की सेवा पूजा सब आपको ही करनी पड़ेगी, हमारी सारी व्यवस्था, क्योंकि प्रभु भगवान के जो प्रति श्रद्धा भाव सेवक जागृत करता है तो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जागृत होती है, इस प्रकार आपकी सेवा पूजा से हमें विश्वास है हम लोगों को यहां पर अच्छा प्रकाश मिलेगा, सत्संग मिलेगा, इसलिए जबरन संतों ने हट करके उनको वहां पर रोक लिया, अगर रुकना पड़ेगा, ठीक है भाई चलो भाई। इस प्रकार अब कुछ सेवा चौक चाकरी करने के लिए एक फूसबारी के लिए वृद्ध माता जी वहां एक ब्राह्मणी थी उसको रख दिया, आप फूसपोरे का काम आप कर दिया करो और बाकी की गुरु महाराज जैसे आज्ञा देवे उस आज्ञा के अनुसार आप यहां पर ये कार्य करो मंदिर में। वो माई वृद्ध माता थी, घर में कोई काम था नहीं, वहां सेवा करने के लिए मंदिर में रह गई, महात्मा जी वहां पर मंदिर में रह गए, सत्संग होने लगा, बहुत से लोग शिष्य बन गए। अब शिष्य बनने के बाद एक दिन ऐसा समय आया, अब महाराज तो सभी चारों वर्ण राम के खाते, चारों वर्णों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, कोई भी प्राणी आता है उसको भगवान नाम का सहज भाव से उपदेश देते हैं, उनको प्रभु के चरणों में लगाते हैं तो उनके प्रति बहुत से लोगों के हृदय में गुरु भाव पैदा हो गया और उन्होंने बड़े प्रेम भाव से महाराज को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। चलते चलते गुरु पूर्णिमा आ गई, जैसा कल परसों आई थी ना, गुरु पूर्णिमा आ गई। अब गुरु पूर्णिमा के दिन वैसे तो प्रतिदिन ही गुरु पूजा करनी चाहिए, कोई एक दिन पूनम के दिन ही पूजा करके पिंड छुड़ा दिया कि भाई एक दिन पूजा कर लो काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु को वंदन कीजिए दिन में बार हजार, पूर्ण सदगुरु वंदियां कट जाए कोटि विकार। गुरु महाराज को तो बारंबार वंदन करना चाहिए, एक बार नहीं अनेक बार हजार बार वंदन करना चाहिए, लेकिन सामान्य रीति से दुनिया के कम से कम एक बार तो गुरु महाराज के 12 महीने में जाकर के दर्शन कर लो और प्रणाम कर लो, चंदन पूजा कर लो। इसलिए गुरु पूर्णिमा का समय आया, अब सभी लोग बाग गुरु दर्शन करने के लिए उतावले, उत्कंठित लोगों की भीड़ लगी, सब लोगों ने दर्शन किया, प्रणाम किया। रामकृष्ण जी वहां पास में बैठे, उसी भक्तों की श्रेणी में भीड़ में एक कुछ शूद्र चमार, जो रामकृष्ण जी जिसको जानते थे, वो भी भीड़ भाड़ में उनके शिष्य बन गया था उपदेश लेकर के, वो भी आया और उसने गुरुराज के चरणों को छुआ, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। पंडित जी थे ना ये रामकृष्ण जी, इन्होंने ये बात देखी तो उनको बड़ी ग्लानि पैदा हो गई, छी 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 ये क्या कर रहे। वो एकाएक गुरु महाराज से कहने लगे, महाराज ये काम अच्छा नहीं है, आप और तो सब ठीक करते हो, उपदेश बढ़िया सुनाते हो, सत्संग बढ़िया बताते हो, लेकिन शूद्र लोगों को, नीच लोगों को सदा दूर रखना चाहिए। दूजा क्षुद्र बेड़ा बनाए ना ही बाता, ब्राह्मण और क्षुद्र ये साथ में रहे, ये बात ठीक नहीं महाराज, इनको तो अलग रखना चाहिए, इन्हें दर्श दीजिए, रखो हाँ दर्शन भले ही दो लेकिन दूर रखकर के दर्शन दे दो, इनको स्पर्श कैसे करने देते हो महाराज, और आप इनको नहीं बताओगे तो इनको क्या पता पड़ेगा, बताने पर ही तो सबको अपनी बात मालूम पड़ती है। इसलिए जब ये रामकृष्ण जी ने गुरु महाराज से ये बात कही, पंडिताई का जोश और विद्वता का जोश था, इस भाषा बोल गए, गुरु महाराज ने उस समय एकदम पलट करके कहा, अरे तुझे पता नहीं इसकी भक्ति कैसी क्या है, भगवान केवल भक्ति के प्यारे होते हैं, भगवान के पाने के लिए केवल भक्ति साधन होता है, तुम केवल इसकी जाति वर्ण को देखते हो, देखो तुमने जो इसके आज इसको भक्ति का पहचान नहीं किए बिना जो इसको तुमने अपमानित किया है, इसके परिणाम स्वरूप हम किसी को गाली देते हैं तो गाली उलट करके अगला स्वीकार नहीं करा तो हमारे पास आ जाती है, मनेडर कहीं भेजते हैं अगला लेने से इनकार कर देता तो वो वापस लौट करके भेजने के वाले के पास आ जाता है, तो तुमने तो इसका जो अपमान किया है ये तो भक्त होने के नाते इसे स्वीकार करता नहीं, वो अपमान तुम्हारे पास आएगा और आगे अगले जन्म में तुम्हें भी इसी वर्ण में जन्म लेना पड़ेगा, क्या करते हो। पड़ी तोई खामी हरि गर्भस्थी तुम्हें ना ही जाने, धुरो जन्मिये में या मैं भई एम बाणी, तुम खुद इसी में जन्म धारण करो, बस भक्ति की नहीं पहचान करने वाले के लिए दंड यही है, तुम्हें पता चलेगा बाद में। अब जब ये बात गुरु महाराज की निकल गई जबान से, रो पड़े कृष्ण रामकृष्ण जी, चरणों में पड़ गए, विनती करने लगे, महाराज ऐसा मत करो, ऐसा साहब नहीं, मैं तो आपके चरण में इसलिए आया हूँ कि जन्म जन्मांतर तक सदैव आपके इन चरणों में रहूं, और यदि मैं शूद्र योनि में जन्म ले लूंगा और आप सत्पुरुषों के रूप में महापुरुषों के रूप में कहाँ के कहाँ रहेंगे तो मेरी क्या दशा होगी, उस समय मेरा कौन आधार होगा, ऐसा मत करो महाराज। उसने कस करके वो जोर से महाराज के चरण पकड़ लिए, जोर से पकड़ लिए, छोड़े ही नहीं, रोवे आंखों में आंसू की धारा गिरे। अब भूल हो गई, गलती हो गई, गलती में दंड मिल गया, लेकिन संत महात्मा सहज भाव से दयालु होते ना, कहते हैं साधु प्रणिपाते ना हुए। ब्राह्मण को राजी करना हो तो लड्डू खिलाओ, मिठाई खिलाओ, और भगवान को राजी करना हो तो उनका उनको वंदन करो, प्रणाम करो। चंद्रमा को राजी करना हो तो अपना कपड़े का तंतु चढ़ा दो, कपड़े का डोरो तोड़ चढ़ा देना हो, नयो चंद्रमा दी खेजना, ये चंद्रमा जी पुराण लीजो और नयो दीजो माने हो। माँ देव जी को राजी करना हो तो आकड़ा धतूरा चढ़ाओ, पानी चढ़ा दो बाबू जी, और संतों को राजी करना हो तो चरणों में गिर पड़ो, बस साधु प्रणिपाते ना, जो चरणों में गिर पड़े कितना ही क्रोध हो ठंडा पड़ जाता है। महाराज ने माथे पर हाथ रख करके उठाया, उठ भैया उठ उठ उठ, महाराज मैं अपने श्राप से कैसे मुक्त हूँ, मुझे कहीं भी जाऊं उसमें मुझे कोई डर नहीं है, परंतु मेरा आपसे वियोग नहीं हो, केवल मेरी ऐसी चाहना है मैं जहाँ जाता हूँ तो आप भी यदि वहां पर पधार जाते हैं, मुझे अपने साथ में रख लेते हैं तो मेरा जीवन सफल होगा, मुझे बाद में किसी प्रकार कोई पश्चाताप नहीं रहेगा, मैं आपका वचन स्वीकार करते हुए भी आपको सदा अपने पास में रखना चाहता हूँ, ऐसी कृपा करो महाराज, दया करो दया करो। इस प्रकार विनती की तो उस महात्मा जी ने आखिर में कहा, भैया चलो ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी भावना है, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहां पर आऊंगा और मैं तुम्हारे पिता के रूप में जन्म लेकर के तुम्हारे साथ में रहूंगा और तुम पुत्र रूप में मेरे पास में रह करके अपना जो साधन करते रहना। बस यद्यपि कहते जैसे मैं मुझे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऐसे महापुरुषों को जन्म क्यों लेना पड़े, परंतु आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी आवश्यकता है तो मैंने जैसे नृसिंह भगवान ने सिंह के रूप में अवतार लिया, भगवान ने मछली रूप में अवतार लिया, काछुए के रूप में अवतार लिया, इसी प्रकार मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारे पुत्र तुम्हें पुत्र बनाने के लिए पिता के रूप में अवश्य आऊंगा, तो मैं चिंता नहीं करती। पुरुषोत्तम सालम सुने वीक लागे क्षमानाथ चूकम हमें भागे, ओह प्राण प्यारा तजा नाई जीव तुम्हें अनसाऊ कृपा व्रत प्यो, तब वह कृपालो कहो तुझी इच्छा फले भाव सतम करे राम ऋचा, तुम्हारा भाव सफल होगा, भगवान सदा रक्षा करे, अपना भाव सदा कायम रखो। इस प्रकार उन्हें वचन सुनाया और फिर महाराज के वचनों का पालन करते हुए भगवत भक्ति में रामकृष्ण जी लगे रहे। जूनागढ़ में थे ना, जूनागढ़ में उस समय की बात। अब कुछ समय की बात अकाल की स्थिति पैदा हो गई, तो उस समय गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के वे अहमदाबाद नगर में चले गए, वहां अच्छी दुकान चलाई, अनाज की दुकान लगाई, अच्छा व्यापार किया, कोई भी संत महात्मा आता तो उनकी बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से सेवा करते, अन्न की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था और कोई जो संतों की आवश्यकता की बात, षड दर्शन में कोई भी आवे अब किसी के प्रति भेदभाव नहीं, क्योंकि भेदभाव से पतन होता है, ये बात उनके समझ में आ गई, इसलिए चटपट अब उन्होंने संतों के प्रति निश्चल भाव से निश्चल भक्ति करनी चालू कर दी और वहां पर लगे रहे। गुरु महाराज एक बार वहां पर पधारे अहमदाबाद का पूजन किया, सत्कार किया, गुरु महाराज ने उनसे कहा, देखो भैया इस आगे लग रहा है अगले कुछ समय में अहमदाबाद में भी विघ्न आने वाला है, संकट आने वाला है, इसलिए नगर छोड़ देना चाहिए। महापुरुषों ने पहले प्रेरणा प्रदान कर दी, आज्ञा मिली, अब वे वहां से उनकी आज्ञा पाकर के बड़ौदा में चले आए, रहे गुजरात के गुजरात में, पहले जूनागढ़ में, जूनागढ़ के बाद में पहुंचे अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद पास में आए तो आप पहुंच गए बड़ौदा में। ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर दी थी, रुपये पैसे ज्यादा होते थे, आजकल तो लोग बाग बैंक में और लॉकर में रख देते हैं, लेकिन पहले ये तो इनकी व्यवस्था थी नहीं तो कहां रहते, इन वसुंधरा धरती में बहुत सा धन उन्होंने गाड़ दिया था, सोना इकट्ठा किया, मोरे इकट्ठी कर करा करके जमीन में गाड़ रखी थी, भाई बाद में कभी ले लवा लेंगे, जरूरत होगी तब काम लेंगे, रख गए छोड़ गए, अब वहां से छोड़ करके चल दिए तो चल दिए, जो अहमदाबाद के व्यापार की बात है, ये बात आगे की बात प्रसंग में आती है। जब एक दिन रामदास जी महाराज के पास में दयाल जी महाराज बैठे थे खेड़ापा में, बाद की बात हो, तो उस समय में वहां बैठे बैठे महाराज ने दयाल जी महाराज ने रामदास जी महाराज से कहा, गुरु महाराज से, वहां प्रथा पड़ी दुराज सोई, ये महाराज वहां गुजरात में जमीन में गाढ़ा हुआ धन फालतू ही पड़ा है ना, पहले जन्म की बात हो, गाढ़ा हुआ पहले जन्म का, और ये बता रहे वहां प्रथा पड़ी दुराज सोई, बेकार पड़ी है संपत्ति इस जमीन में, और यहां लगे सदा सफल हो, वो संपत्ति यदि यहां ले आए और सदा व्रत में परमार्थ में लोगों की सेवा में, दीन दुखियों के सहयोग में लगा दें तो उसका उपयोग हो जाएगा ना, कितना अच्छा रहेगा। इसमें क्या आपकी आज्ञा है? तो गुरु महाराज ने पूछा, पहले तो ये बताओ तुम्हें पता कैसे पड़ा कि वहां धन है? तुम्हें पता कैसे चला वहां धन पड़ा है? तो बताया, श्री राम भजन और कृपा। आप एक तो राम जी के भजन से और एक आप गुरु महाराज की कृपा से ये बात मालूम पड़ी है। तो जब राम जी के भजन का विश्वास हो और गुरु कृपा का विश्वास हो तो फिर संपत्ति का क्या लेना देना, क्या उसमें क्या अपना लेना देना है? धरती से पैदा होने वाली चीज वापस धरती में मिल गई तो जिसको मिलनी मिल जाएगी, तुम्हें तो भजन में विश्वास रखना चाहिए ना, संपत्ति पर क्या विश्वास रखना? राम जी को देना है जितना, परमार्थ कराना है वे देते रहेंगे, उससे करते रहो, ज्यादा आशा मत रखो, छोड़ दो। विश्वास नाय तिंदुक अपार, सुन वचन दयाल मन समझदार। विश्वास नहीं होता है उसको संसार में अपार दुख भोगने पड़ते हैं, और जिनको विश्वास होता है उसको किसी प्रकार भी कोई दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए उसके बाद भी वो संपत्ति के विषय में कुछ चर्चा नहीं की। मतलब वो जो गुजरात में उन्होंने संपत्ति वहां गाड़ दी, वो छोड़ करके वे बड़ौदा में चले आए, बड़ौदा में रहे, अब वहां पर सगुण भक्ति में लगे हुए थे, भगवान का रासलीला का ज्यादा रस था, रासलीला के बड़े प्रेमी थे, रासलीला के पद गायन किया करते थे, रासलीला में मगन रहा करते थे। एक दिन की बात, बड़ौदा में एक विश्वामित्री नामक नदी है, विश्वामित्री नामक नदी है, उस नदी के पास में एक शिवजी का मंदिर है, उस मंदिर के बगल में ही एक बावड़ी है, मातृ बावड़ी जिसका नाम है मावड़िया की बावड़ी, अपन भाषा में कहे मावड़िया की बावड़ी और गुजराती भाषाओं के मातृ बावड़िया। उस बावड़ी में वे बैठे थे एक दिवस व्यापी मातृ अम्बा दर्श मन मंदो है, वहां बैठ करके जब वे ध्यान करने लगे भगवान का, तो उसी बावड़ी में एकाएक मनमोहन भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए, उनके दिव्य तेज के रूप में उनका दर्शन होने लगा, दिव्य आकार, दिव्य छवि, दिव्य प्रभा, आंख खोल करके सामने देखा, हो 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 हो, मैं क्या देख रहा हूं, प्रभु मेरे सामने प्रकट हो गए, निहाल हो गए। बात करने के लिए जो ही आगे बढ़े कि फिर वापस अंतर जान हो गए, बस सब जान भर जे। इस प्रकार उनके मन में ये भाव जागृत हुआ, बहुत स्नेह से वापस आए। धीरे धीरे करके जो कोई भक्त लोग बाहर खड़े थे उन लोगों से ये उनके परिचय की बात लोगों को मालूम पड़ गई, राजा को भी बात मालूम पड़ी, राजपूजी बन गए, राजा ने उनको अपना गुरु बनाया, बहुत सम्मान किया, ऐसे वे बड़ौदा में बहुत श्रद्धा भक्ति के पात्र बने। आगे चल करके संबत 1703 दसवें भाद्रपद जान राम कृष्ण तन त्याग कर मरधर प्रगटयान, उन रामकृष्ण जी ने 1769 में भाद्रपदी दशम के दिन अपने शरीर का त्याग किया। 1769 में देहांत हुआ, वही रामकृष्ण जी आगे चल करके दयालजी महाराज के रूप में प्रकट होकर के आए, वे रामकृष्ण जी ही। रामदास जी महाराज जब वो स्वामी दंडी स्वामी धाम पधारे तो वे तो रामदास जी महाराज के रूप में प्रकट होकर के आए, बीकम कौर में आपका प्राकट हुआ, शादुल जी आपके पिताजी, अणबी आपके माताजी, वहां बीकम कौर में मेघवाल वंश में आपने जन्म धारण किया, और वहां से खेड़ापा में चले आए, 25 वर्ष तक गुरु की खोजना की, गुरु हरिरामदास जी महाराज उनको प्राप्त हुए सिंथल में, और उनसे उपदेश प्राप्त करके आप भजन साधन में लगे, गुरु महाराज की आज्ञा हुई घर गृहस्थ पाल करने के लिए, तब दयाल जी महाराज का जन्म हुआ वड़ू गांव में 1816 में। तो ये बीच में ये समय रहा 1769-1816, ये 31 और 49 वर्ष का लगभग का समय है। इसके बीच में अब वो कुछ समय बाद में दाम पधारने भी उनको बड़े होएंगे, और कुछ इनकी अवस्था भी बड़ी हो महाराज के तभी पुत्र का जन्म हो सकता है। इस प्रकार ये 16 में आपका जन्म हुआ, और रामदास जी महाराज का जन्म हुआ है 1883 में, 1883 में आपका जन्म हुआ। 1786 में लालजी महाराज का जन्म है। 1783 में रामदास महाराज का जन्म हुआ, 1769 में वो दाम पधारे हैं। ये बीच का समय मतलब उनके आगमन की प्रतीक्षा में वे कहीं प्रतीक्षा तो होकर के बैठे रहे, अब किस जगह बैठे रहे ये पे वर्णन नहीं आता है, लेकिन कब वो महाराज आवे और कब मैं उनका वापस संग प्राप्त करूं। बात बतानी ये थी कि उस समय जो पंडित थे वो पंडिताई इस समय भी उनके हृदय में मौजूद थी। वो पंडिता वो विद्वता आयु बदल गई, जन्म दूसरा हो गया, परंतु पंडिताई उनकी वो कमी नहीं पड़ी, ज्ञान में कोई कमी नहीं आई। इसका अनुभव तब होता है जब 1816 में 18 तो महाराज जन्म हुआ, उसके बाद में 1821 में आप खेड़ापा पधारे, 22 में जो है जूनी जगह स्थान है गांव में, जिन लोगों ने देखा है खेड़ापा है उन लोगों को पता होगा, गांव में एक स्थान है छोटा है, लेकिन जो पहले गांव के हिसाब से था तो वहां पर महाराज विराजे थे। तो वहां पर 1823 में, 22 में तो जाकर के रामदास महाराज रहे और 1823 में उनका वहां पर गुरुदेव जी महाराज की पधरावनी की अपने स्थान में, क्योंकि जब तक गुरु महाराज के चरण घर में नहीं पड़ते हैं तब तक कैसा भी सुंदर घर हो या राम द्वारा हो वो सुना है शून्य है, गुरु महाराज के बिना निष्क्रिय है। जैसे प्राण के बिना शरीर होता है उसी प्रकार उनका वो स्थान हुआ करता है। तो ऐसे उस जगह में तो अब 1823 में महाराज की उम्र कितने साल की रही, 7-8 साल की रही, क्योंकि 16 में तो जन्म है, मिघ सरस्वती 11 के दिन तो जन्म है, और 1823 के फागुन में आपने वहां पर बदावना किया। तो 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 का, तो ये 7 साल की उम्र थी उस समय। 7 साल की उम्र में अब वे कहां पढ़ाई करने के लिए गए, कौन सी स्कूल में गए, कोई ऐसी बात थी नहीं, परंतु उनके हृदय में स्वाभाविक ही इस प्रकार का बोध प्रकट हुआ कि एकदम गुरु महाराज के आगमन पर मोरे मन आज उमावो हो, ये पद जो बधावने के रूप में एकाएक ही उनके हृदय में प्रकट हुआ और वाणी के द्वारा वो मुख के द्वारा प्रकट होकर के सारी सभा के बीच में गुंचित होने लगा, मोरे मन आज उमावो हो। राम स्नेही आविया निज भाव बधावो हो, मोरे मन आज उमावो हो। ये जो पद उनके हृदय में प्रकट हुआ बधाई, अब 7 साल के बालक के हृदय में कोई ऐसी वाणी प्रकट हो जाए जो कि पद के रूप में वो भी वास्तविक गायन के रूप में गा करके जो पद बोला है संतों ने सुनाया कि जब वो ये पद बोल रहे थे दयालजी महाराज छोटे बालक थे, अंगर की पहनी हुई थी, कसे बांधने के पुराने जमाने में अंगर की रखा करते थे, तो कसे बंधी हुई थी अंगर की, तो इतनी छाती फूल गई कि अंगर की कसे तट 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 तक टूट गई थी, हृदय इतना प्रफुल्लित हो गया खुल गया, इस प्रकार एकदम भाव विभोर हो गए। तो वही विद्वत्ता वही भाव इस जन्म में आने पर भी उनके हृदय में ज्यों के त्यों मौजूद रहे, जहां वाणी की आवश्यकता पड़ी उन्होंने वाणी की रचना सहज भाव से कर दी। जिस किसी पंडित से वार्तालाप हुआ तो बिना कुछ कविता के जोड़ तोड़ के शब्दों के जैसे कोई पहले से याद कर रखी हो उसी प्रकार कविता के में जवाब दिया। सुनने वाले विचार करते हम लोग कोई कविता बनाते हैं कोई न कोई शब्द बदलना पड़ता है, आगे करना पड़ता है पीछे करना पड़ता है, तुकबंदी रस दीर्घ में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन ये तो सहज भाव से बोले जा रहे हैं। कौन दस जीव है कि जाति बताओ, आज एक भर अनादिशु आयो, 9-10 रुद्र 20-30 हो एक चार मानस, सहज भाव से शब्द बोले जाते हैं। सुनने वाला कहता है कि क्या तुम ऐसा याद करके रट करके बोल रहे हैं क्या, और भाव उत्तर जो देते मांगते वो उत्तर देते हैं तो रटने की बात ही क्या है। इस प्रकार इनके वाणी सहज भाव से इनके हृदय से प्रकट हुआ करती थी। तो सज्जनों अब ये बात बात बतानी है, जो प्रसंग आज अपने चालू कर रहे हैं यह है गुरु प्रकरण। ये गुरु प्रकरण 1839 विक्रम संवत 1839 में गुरु महाराज से वार्तालाप करते समय, जब जूनी जगह में 12 साल जूनी जगह में रहने के बाद आप 1834 में जो वर्तमान में रामधाम है वहां पधार गए थे रामदास शिवराज सब संत मंडली के साथ में, तो दयाल जी महाराज भी वहीं पर पधार गए थे। तो दयाल जी महाराज भी वहीं विराजमान थे, तो पहाड़ी पर जो गुफा है वहां पर आपने भजन करना चालू कर दिया। समय अनुसार भजन करने के लिए एकांत में जब भी जरूरत होती वहां जाके बैठ जाते, भजन करते और वापस स्थान में आकर के गुरु महाराज की सेवा करते, स्थान की सेवा करते, दोनों काम साथ में। एक ऐसा नहीं कि भजन में बैठ गए तो सेवा छूट जाए, सेवा छूट जाए तो फिर गुरु सेवा सेव गुरुदेव की पीछे हर की सेव, भजन तो बाद में और सेवा पहले, तो सेवा में भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो सेवा करने के लिए वापस स्थान में आना और भजन करने के लिए आवश्यकता अनुसार गुफा में चले जाना। इस प्रकार भजन साधन 1835 में या 36 में चालू किया आपने वहां पर जाकर। उसको चालू करने के लिए भी ऐसी बात सुनी है, संतों ने बताई है, जगह लिखा भी आता है, छोटे अवस्था में थे, अब मान 36 साल में 19-20 साल की उम्र रही आपकी, 36 भजन साधन किया 19 या 20 साल की अवस्था रही है, तो आपको ऊंट चलाने का बड़ा भारी शौक था। ऊंट चलाया करते, ऊंट ऊंट की सवारी, अब ऊंट की सवारी चलाते हैं। तो एक दिन बालक के मन में कोई बात जज गई, माता जी से कहने लगे, माँ जी आप बिलौना करो, मैं ऊंट को लेके जा रहा हूं, खजनऊ जाके वापस आ रहा हूं, वापस आ जाने तक यदि आपने बिलौने का घी ठिकाने पर रख दिया तो है आपका, नहीं तो मैं ऊंट को खिला दूंगा, घी ऊंट को खिलाऊंगा मैं, नहीं तो आप कर लोगे। देखो इतना तेजी से ऊंट चलाने की कला थी, और वास्तव में ऊंट लेकर के तकह करके चल दिए। 1-2-3 करने के बाद में रेस करने वाले दौड़ते ना बच्चे, इस प्रकार वो दौड़ पड़े, गए ठाकुर साहब के पास पहुंचे, रामासना किया, ठाकुर साहब मैं अपने माँ से ये शर्त करके आया हूँ, बोलो कैसा ऊंट चलाता हूँ। ठाकुर साहब सत्संगी थे महाराज के, कहने लगे, अरे बाबा ये क्या ऊंट चलाते, ऊंट तो जो गुरु महाराज चलाते वो चलाना चाहिए, ऐसा ऊंट तो हम भी चला लेते हैं, ये संसार का ऊंट तो हम भी बहुत चलाते हैं, वो ऊंट चलाया कि नहीं चलाया जो गुरुदेव चलाते हैं। एकदम चोट लग गई, आए तो थे शाबाशी, देखे वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा ऊंट चलाते हो, लेकिन आते ही सत्संग की चोट एकाएक हृदय पर असर कर गई और वे वहां से उन्मने होकर के लौट आए, ऊंट को जहां का तहां छोड़ दिया, चले गए सीधे माँ के पास में, जाके गुरु महाराज के पास में बैठ गए, आंखों में आंसू भर करके प्रणाम करने लगे चरणों में। महाराज ने कहा, क्या बात हुई दयाल, ऐसे उदास क्यों? कहने लगे, महाराज एक बात बताइए, मैं आज ऐसी शर्त करके ठाकुर साहब के पास में गया, लेकिन उन्होंने ये बात बताई कि तुम्हारे गुरु जी महाराज जो ऊंट चलाते वो चलाया कि नहीं चलाया, आप बताइए कौन सा ऊंट चलाते हो, कौन सी कड़ा जानते हो। माथे पर हाथ धो करके कहने लगे, बेटा वो तो भगवान के भजन की बात कही उन्होंने, मैं तो ये जानता हूं और कुछ नहीं। ओहो, भजन की बात बताई तो आपने मुझे इतने साल पास में रहते हुए क्यों नहीं बताया, जो आप बढ़िया काम करते तो मुझे भी बढ़िया काम बताना चाहिए ना। तो आने का, भैया बात ऐसी है कि ये काम बिन पूछिए दाखा गुंज के, बिना किसी से पूछे हुए भजन साधन की बात बताई नहीं जाती है, और यदि कोई बिना पूछे भजन की बात बताते हैं तो वो फलीभूत नहीं होती है, क्योंकि उसमें लोभ होता है। बात बताने से मतलब ये रहेगा कि मैं बात बता दूंगा अगला मेरा शिष्य बन जाएगा, मुझे अच्छा मान करके मेरे सेवा सत्कार करेगा, भेंट पूजा करेगा। ये लोभ पैदा होता है और लोभ है वो पतन करने वाला हुआ करता है। इसलिए मैंने बताया नहीं, अरे केवल मैंने नहीं बताया, इतनी बात नहीं, यह मंत्र अगम जानत महेश सो सती प्रति नायन कहेश। अरे शंकर भगवान भी जिस मंत्र का मैं जप करता हूँ वे जप किया करते थे, परंतु सती वर्षों वर्षों तक उनके पास में रही, परंतु उसको भी उन्होंने वो मंत्र नहीं बताया, मंत्र ने नहीं बताया, क्योंकि जब तक उसने पूछा नहीं तो पूछे बिना बताया नहीं जाता। इसे पूछने का मतलब भूख होनी चाहिए, और भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन रुचता है और पचता भी है, अच्छी रुचि लगती है भोजन में और पच भी जाता है। भूख लगने पर भोजन करेंगे, पहले से अजीर्ण है और ऊपर से और भोजन कर लो तो कहां रुचेगा, कहीं पचेगा, वो और ज्यादा नुकसान करेगा। तो भजन में तो पूरी रुचि होनी बहुत आवश्यक है, पूरी भूख होनी चाहिए, पूरी गहरी भूख होनी चाहिए, इसके बिना रहा नहीं जाए, तड़पण पैदा हो जाए, आंखों में निरंतर आंसू आते रहे, हे परमात्मा मुझे कब ये बात प्राप्त हो जाए, मुझे कब साधन की बात मिल जाए और कब मैं भजन साधन करूं। इस प्रकार ये गहरी रुचि होने पर ही लाभ देता है। तुमने पूछा नहीं था इतने साल, मैंने बताया नहीं, अब प्रेम समझ तीरो वशिख, यदि हृदय में तुम्हारे इस प्रकार प्रेम की जागृति है, पूछते हो तो मैं तुम्हें जरूर वो साधन बताता हूँ, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल इसीलिए दिया है, भगवत भजन करते हुए अपना कल्याण कर लो, अपना कल्याण कर लो, इसीलिए मनुष्य दिया है, और कोई प्रयोजन नहीं है मनुष्य जीवन का, क्योंकि ये मुक्ति का द्वार है, मुक्ति द्वारम अपाव्रतम, खुला हुआ मुक्ति का द्वार है, कोई कपाट नहीं, ये पंडाल चारों तरफ से खुला है, चाहे जिधर से निकल जाओ, पर अगर रास्ते सब बंद कर दिए जाए, एक ही दरवाजा कर दिया जाए, कितनी भीड़ हो जाएगी, और जिधर सब अलग अलग निकल जाएंगे, कोई भीड़ नहीं। तो ये मुक्ति का द्वार परमात्मा ने दिया है, मनुष्य जीवन केवल कल्याण के लिए दिया है, तो मैं जरूर वो साधन बताऊंगा, पर रुचि आज जागृत हुई है, इसलिए बड़ी अच्छी बात है, तुम बैठो एकांत में बैठ करके भजन करो, चितधार उबा बैठे एकांत, मन हर्ष पाए के परम तंत्र, प्रथम रसन में साधु ले द्वितीय कंड लगाए, तृतीय हृदय ध्यान धर चौथे नाग मिलाए, सुमरण चार प्रकार सिद्ध नाभ थके ममकार, श्रुति पवन मन बेल कर चले रकार आगार। ऐसे भजन साधन में वहां पर विराजमान हो गए, साधन की गति बड़ी शीघ्र बढ़ने लगी। तो अब वहां भजन करना और सेवा करनी, ये दोनों साथ में करते हुए 1846 में जब भजन साधन किया, और 48 से गुण 50 में रामदास जी महाराज ने उनकी भजन साधन की गुरु निष्ठा की भावना को पहचाना, और एक दिन उन्हें आज्ञा प्रदान की कि जो तुम्हारे हृदय में ज्ञान की निष्ठा है, गुरु निष्ठा है, गुरु सेवा के प्रति भावना है, तुम अपने ये भाव वाणी के माध्यम से प्रकट कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, वाणी के माध्यम से प्रकट कर दो, बहुत अच्छा रहेगा ये भाव तुम, क्योंकि एक जिज्ञासु के हृदय में पैदा होने वाले शब्द जब कोई दूर से जिज्ञासु के कानों में पड़ते हैं तो उसके हृदय में सहज भाव से एकदम असर कर देते हैं। मुझे तुम्हारे इस भावना में मालूम है, मैं पहचानता हूं, इसलिए उन्होंने एक गुरु प्रकरण के रूप में एक सब जो ग्रंथ बनाने की आज्ञा प्रदान की 1839 में रामदास जी महाराज ने दयाल जी महाराज को, तब उन्होंने कृपा करके ये वाणी की रचना का प्रसंग चालू कर दिया। जहां गुरुवाणी का पाठ होता है सबसे पहले गुरु महिमा का प्रसंग आता है, गुरु देव का अंग आता है, गुरु धर्म का अंग आता है, गुरु महिमा का अंग आता है। तो यहाँ रामदास गुरु महाराज की आज्ञा के बाद जब महाराज दयाल जी महाराज ने ग्रंथ रचना प्रसंग चालू किया, सबसे पहले तो ये गुरु प्रकरण नामक ग्रंथ चालू किया है। गुरु प्रकरण बड़ा विशाल ग्रंथ है, 8000 से ज्यादा श्लोक संख्या है इसमें। रामदास महाराज की वाणी में तो 4300 श्लोक संख्या है पूरी वाणी में, और इनके जो 7 भाग है उनमें से एक भाग है ये गुरु प्रकरण, इसकी भी 8000 से ज्यादा श्लोक संख्या है अकेले। इसमें केवल गुरु महिमा का वर्णन है, अनेक शास्त्रों के प्रमाण को देकर के, शास्त्रों के अध्ययन करके उनके भावों को, जो गुरु धर्म के बढ़ाने वाले भाव हैं, उन भावों को इस गुरु प्रकरण में दयाल जी महाराज ने शामिल किया है। जिज्ञासु के प्रश्न और तार्किक लोगों के तर्क, जो तर्क के द्वारा पूछते हैं कि गुरु पूजा से क्या होता है, राम राम करने से क्या होता है, उन तर्कों को भी आपने इस गुरु प्रकरण के माध्यम से पूछ सुन करके यथा योग्य उत्तर देते हुए, मतलब आखिर में गुरु धर्म के ऊपर ही सभी तर्कवादियों को, जिज्ञासु लोगों को और गुरु प्रेमी लोगों को, सबको एक गुरु धर्म में लगाने के लिए आपने ये सारा ग्रंथ बनाया है। 7 जो ग्रंथ है, ग्रंथ के 7 भाग है दयाल जी महाराज की वाणी के, उनमें इनके 36000 जो संख्या बताई ना आपको, तो ये अलग अलग भाग, जो एक ग्रंथ एक पूरी पुस्तक तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसको प्रकाशित करने के लिए 7 भाग किए हैं। वैसे तो गुरुवाणी का पाठ होता है, उस पाठ में सबसे पहले साखी भाग का पाठ करते हैं, साखी भाग के बाद में गुरु प्रकरण का पाठ होता है, उसके बाद में परची जी का पाठ होता है, परची जी के पाठ में, पाठ के बाद में भक्तमाल का पाठ होता है। भक्तमाल एक अकेला स्वयं ग्रंथ है, परची जी अकेला स्वयं ग्रंथ है, और गुरु प्रकरण स्वयं एक अकेला बड़ा ग्रंथ है। इसलिए इन तीनों को ग्रंथों को अलग अलग नाम से ही प्रकाशित किया गया, और उनके बाद में 25-26 ग्रंथ छोटे हैं, उनको एक स्फुट छंद के रूप में, मतलब छंदों के रूप में, जो ग्रंथों के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में उसको प्रकाशित किया है। उसके बाद में कवित्व भाग है, जिसमें कवित्व है, रेखता है, छप्पे है, शोक इत्यादि जो ग्रंथ अलग अलग समय समय में छंदों की रचना की दयाल जी महाराज ने, वो छंद भाग है, वो छठा है। और 7वें में जो आपने गायन योग जो पद बनाए हैं, 216 पद हैं, उनका भाग है 7वां, जो पद भाग जिसे कहते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 7 भाग इस वाणी के विभाग किए हैं। तो इसमें गुरु प्रकरण ये दूसरा विभाग है, वाणी के भागों के हिसाब से दूसरा भाग में है, कथा प्रसंग में उसी गुरु प्रकरण की कुछ एक बातों का समय रहते हुए हम जितना विचार कर सकेंगे उनको बताने की यहाँ पर चेष्टा की जा रही है। मंगलाचरण प्रारंभ में किया जाता है। सबसे पहले ब्रह्म रूप जो गुरु महाराज, जो साक्षात परात्मा परब्रह्म परब्रह्म है, जीव का कल्याण ही जो गुरु महाराज के रूप में सामने प्रकट होकर के आया है, उन गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। हरे रामदास महाराज, रामदास महाराज, और वे जो मंत्र प्रदान करते हैं संजीवन मंत्र, जो सदा तीर कभी नष्ट होने वाला नहीं, सदा कायम रहने वाला है, सदैव मंगल रूप है, वेद और शास्त्र इतिहास और स्थिति और स्मृति, इनमें सब जो भगवान की महिमा के साथ में गुरु महिमा का भी पूर्ण रूप से वर्णन बताया गया है, और उनमें ये बात बताई है कि भगवान तो गुरु महाराज के पास में रहते हैं और गुरु महाराज सदा भगवान के साथ में रहते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। जिसने गुरु का आश्रय ले लिया वो उसने भगवान का आश्रय ले लिया, क्योंकि भगवान उनको मिलेंगे ही, और जिसने भगवान का आश्रय ले लिया तो उसको गुरु महाराज के बाद में कोई अंतर नहीं रह जाता है गुरु में। परंतु हम सीधे गुरु महाराज के साथ में संबंध जोड़ना चाहते हैं, पहले सीधे भगवान के साथ में संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे को मिलते नहीं, हम उन्हें पहचान नहीं सकते, अरे सामने आ जाए तो भी हम उनको पहचान नहीं पाते, करें तो करें क्या, सामने आ गए तो भी नहीं पहचान पाए, और कई ऐसा मौका हो गया तो मुश्किल हो जाएगा ना, हनुमान जी वाली बात हो जाएगी, हनुमान जी को तुलसीदास जी को चेताना पड़ेगा ना, चित्रकूट के घाट पर बैसंतन की भीड़। तुलसीदास जी महाराज वन में जाते थे और तुम्बी का बचा हुआ पानी एक पेड़ में डाल देते थे, उस पेड़ में कोई भूत रहता था, भूत पवित्र पानी पी नहीं सकते, गंदा पानी पीता। एक दिन प्रसन्न हो गया भूत, कहने लगा बाबा मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा वरदान मुझे तो भगवान का दर्शन करा दे। क्योंकि महाराज ये तो मेरे बस का रोग नहीं, मैं भगवान के दर्शन करा सकूं ऐसी ताकत मेरे में नहीं है, ये काम तो कोई भगवान का प्यारा भक्त ही कर सकता है, तो कोई पता बताओ ऐसा कौन भक्त है जो भगवान का दर्शन करा सके। तो जाओ आपको हनुमान जी भगवान का दर्शन करा देंगे, आपको भगवान का दर्शन करा देंगे। भूत मिला हरि भेद बताया, हनुमान हरि चरणा लाया। अब उसके लिए आपको चित्रकूट में नदी के तट पर जाकर के बैठ करके साधना करनी पड़ेगी, हनुमान जी की साधना की। हनुमान जी प्रकट हुए, बोलो क्या चाहते हो, भगवान का दर्शन कराओ, भगवान का दर्शन कराओ। तो उस समय भगवान राम एक राजकुमार का रूप बना करके घोड़े पर सवार होकर के घूम रहे थे, हाथ में धनुष बाण लिए जानवरों का शिकार करते हुए, इधर वन में घूमे उधर वन में घूमे। तुलसीदास जी हनुमान जी के पास में खड़े, अब यदि हनुमान जी सामने खड़े हो जाएं तब तो राम जी एकाएक के सामने उनमें मिलाने आएंगे कहां। तो हनुमान जी एकदम चुप हो गए, खड़े हो गए चुप करके। अब तुलसीदास जी को वहां पर वे शिकार करते हुए राजकुमार दिखाई दिए। हनुमान जी ने कहा था कि यहां पर अभी राम जी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उस राजकुमार को राजकुमार समझ करके उन्होंने प्रणाम किया नहीं, वे चले गए। दर्शन तो हो गया लेकिन पहचान भी नहीं, क्या हुए। बाद में हनुमान जी आए, क्यों दर्शन हो गया ना राम जी का, अरे कहां दर्शन हुआ, अरे वो भी शिकार खेलने थे ना, घोड़े पर सवार थे ना, अरे वो तो राजकुमार थे ना, अरे राजकुमार मैं तो समझा उनको ये तो साक्षात राम जी थे, गजब हो गया मैं नहीं दर्शन नहीं कर पाया। फिर चरण पकड़ लिए हनुमान जी के, रोने लगे, सामने आ गए तो पहचान हाथ में थोड़ा ही है। दोबारा वे नदी के तट पर बैठ गए, चंदन घिस रहे हैं, हनुमान जी पेड़ पर तोता बनकर के बैठ गए, यहां भी कहीं चूक नहीं जाए इसलिए। अब दर्शन की लालसा तो भक्त की भावना को तो उन्हें पूर्ण करना ही पड़ता है, कहां जाए भावना को, तो भगवान को भक्त कोई बात धारण कर ले भगवान उसको पूरी नहीं करे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब भक्त का नाश नहीं होता भगवान का, प्रतिज्ञा करे हनुमान अर्जुन को, कह महाराज ये तो प्रतिज्ञा आपको करनी चाहिए कि मेरी प्रतिज्ञा तो मैं भूल जाऊं लेकिन भक्त की बात मैं कभी भूलता नहीं। भक्त जो प्रतिज्ञा करेगा मैं उसे हमेशा याद रखूंगा, और तुम प्रतिज्ञा कर लोगे तुम मेरे भक्त हो तो मैं याद रखूंगा, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होना चाहिए, बात ऐसी है। तो भगवान को भक्त की बात पूरी करनी पड़ती है। तो वहां पर एक पथिक बनकर के आए, स्नान किया मंदाकिनी में, और स्नान करने के बाद में जैसे टीकी लगाते हैं ना, टीकी लगाने की व्यवस्था होती है, लोग वहां करते हैं टीकी लगाओ, टीकी लगाए बिना स्नान पूरा पवित्र नहीं होता। तो तुलसीदास जी वहां चंदन घिस रहे थे, वे दोनों ही राम और लक्ष्मण यात्री बनकर के वहां गए। बाबा चंदन दोगे,
हम लो लो बारा लो। अब उन्होंने टीकी लगा ली, चूके इधर भी पहचान नहीं सके। तब हनुमान जी ने आखिर में दो आकार चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक दे रहे वो है रघुवीर है राम जी है, क्या चूक रहे हो तुम हनुमान तुलसीदास जी। तब वो संकेत समझ गए, चटपट वो चकोलड़ा छोड़ करके और उनके पैर पकड़ लिए। अरे छोड़ो पैर क्यों पकड़ रहे पैर, नहीं महाराज आप राम जी हो, आप राम जी हो। तब कोई पहचान पाए भाइयों, सीधा भगवान के साथ में हम संबंध जोड़ना चाहे तो पहचान नहीं कर सकते। यदि हम पानी आकाश का जो है लेना चाहे तो बादल के द्वारा ले पाएंगे, बिना बादल के पानी कैसे लेंगे। इसी प्रकार गुरु महाराज के साथ में यदि संबंध जोड़ लेंगे तो भगवान अलग रह नहीं पाएंगे, वो मिल ही जाएंगे, मिलना ही पड़ेगा उनको। और भगवान के साथ में संबंध हो जाएगा तो गुरु महाराज मिल जाएंगे, लेकिन ये बात संभव होती नहीं है। गुरु जनरिया पहली करो, गुरु गोविंद सो पीर, गुरु गोविंद से पहले प्रेम करो, ता पीछे जगसू तजो लोक राज कुल लोक लाज कुल रीत। जनहरिया पहली करो, गुरु गोविंद सु प्रीत, पहले गुरु भगवान से प्रेम करो और पीछे संसार का संबंध छोड़ दो। यहां से प्रेम जोड़ करके संसार का संबंध तोड़ दो। तो ये बात उनको पहचाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और उन गुरु में जो ही हमारी भगवत भावना हुई सज्जनों कि भगवान उन गुरु महाराज के द्वारा मिलेंगे ही। गुरु बढ़ाने के लिए बात ये श्लोक सब लोग जानते हैं, गुरुर ब्रह्मा, जानते हो ना भाइयों बहनों, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु के वंदना है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों नाम क्यों लिए हैं कि तीनों ही शक्ति गुरु महाराज में है। तीनों ही शक्ति गुरु महाराज में होने के नाते हमें गुरु महाराज के साथ में संबंध जोड़ना चाहिए। तो परंतु गुरु के साथ में संबंध जोड़ने के पहले गुरु महाराज में ब्रह्मा का भाव होना चाहिए, याद रखो। मनुष्य का भाव खत्म करो। जिसको हम गुरु बना रहे हैं वो गुरु ब्रह्मा है, वो गुरु विष्णु है और वो गुरु महेश है। महेश रूप से भी हमारे अंदर रहने वाले अवगुणों का दमन करेंगे। जैसे महेश जीवों का संहार करते हैं, हमारे पापों का संहार करेंगे। गुरु महाराज ब्रह्मा जी के समान हमारे अंदर नए सद्गुणों का संचार करेंगे और विष्णु के समान सद्भाव के द्वारा हमारा पोषण करेंगे। ब्रह्मा जी बढ़ने का काम करते हैं तो नए भाव बनाते हैं और सद्भाव का पोषण करते हैं। संसार में ब्रह्मा जी ने जितनी सृष्टि पैदा की विष्णु उनका पोषण करते हैं। ब्रह्मा ने तो निर्माण किया, विष्णु ने पोषण किया। तो इन पालन पोषण और संहार करने का काम शंकर, तो दुर्गुणों को संगमन करने का काम भी गुरु महाराज करते हैं। इसलिए गुरु महाराज में तीनों ही देवों का रूप। तो गुरु महाराज में मनुष्य नहीं है, गुरु महाराज साक्षात ब्रह्मा है। गुरु महाराज मनुष्य नहीं है, गुरु महाराज साक्षात विष्णु है। और गुरु महाराज साक्षात मनुष्य नहीं है, वे महेश है। और इनसे भी आगे बढ़ करके ये तीनों देवता तो संसार का कार्य संचालन करने के लिए गुणात्मक देवता है, परंतु इन सबको प्रेरणा देने वाले साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया और शंकर को बनाया। वो साक्षात ब्रह्म परमात्मा ही गुरु महाराज है। पहले नीचे की श्रेणी अपना करके उससे आगे पहुंचो। अब बताइए उन गुरु महाराज में मनुष्य भाव कैसे होगा। और इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को तो कभी गुरु मत बनाओ और गुरु को कभी मनुष्य मत बनाओ, गुरु को मनुष्य मत बनाओ। जब तक ये भाव पैदा नहीं हो आप गुरु बनाओ ही मत। भावना आप बनाए रखो, भावना जोड़े रखो, उस भावना को कायम रखो कि हमें गुरु की शरण लेनी है, सच्चे गुरु की शरण लेनी है, प्रार्थना परमात्मा से करो, वे संयोग मिलाएंगे, सच्चे गुरु की प्राप्ति कराएंगे, भावना दृढ़ होगी। तो वर्तमान का एक प्रसंग आता है इस विषय के लिए, पुलवानंद कंद भगवान की, वर्तमान का प्रसंग आता है, उस प्रसंग में बात आती है जीवा और तत्वा नामक दो पंडित थे, ब्राह्मण थे, जीवा नाम तत्वा।